نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی شاید دو چار مال کا نام ہے, جیسے نظروں کی حفاظت کر لی یا کچھ خواتین شرعی پردہ شروع کر دیں, کوئی مرد افراد داڑھی رکھ لیں, ٹخنوں سے اوپر پینچے کر لیں اور غیر شرعی تقریبات میں جانا وہ چھوڑ دیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تقریباً چیمپئن ہو گئے. تو یہ تو چند جزوی باتیں ہیں, چھوڑ دیا بہت مبارک حالت ہے اور نفس پہ بہت گہرا اور مشکل ہوتی ہیں چیزیں, تو کر لیا تو شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن تقوی کی فیلڈ کافی بڑی ہے. تو ایک ایسا گناہ جو ہم لوگوں کے اندر اتنا بہت بڑا گناہ ہے اور اتنا کثرت کے ساتھ ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے, اس میں نیک اور بد, فاسق فاجر گناہگار بھی, عام لوگ بھی, نیک لوگ بھی, داڑھی والے بھی, بغیر داڑھی والے بھی, متقی بھی, پرہیزگار بھی, یہ کامن گناہ ہے مشترک کثرت کے ساتھ. اور اس گناہ کا المیہ یہ ایسا ہے کہ کوئی دوسرا گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں تھوڑا سا شرمساری ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں ایسا ایسا گناہ کر رہا ہوں, تو اس کی توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے کہ جب احساس ہوگا تو اللہ کی رحمت کبھی نہ کبھی ضرور نازل ہوتی ہے اور بندے کو توبہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ اتنا لانتی گناہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی حالت میں اکثر مر جاتا ہے لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں. اب وہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے ظلم اور ستم کرنا اور سنگ دلی, سخت دلی. یہ بہت کثرت کے ساتھ یہ ظلم اور ستم کا معاملہ, مزاج میں سختی اور ظالمانہ انداز فکر, ظالمانہ کردار ادا کرنا, تو یہ بہت ہی خطرناک ایک گناہ ہے. اور جس کا اکثر لوگ وہی بات کہ کوئی بھی ظالم ہوتا ہے اکثر وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں ظالم ہوں, وہ اکثر جو ظالم جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں, کہتے ہیں میں تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا, میں تو الٹا مظلوم ہوں. بھائی تو آپ کی اپنی رائے نا, آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بیوی کیا کہتی ہے, بچے کیا کہتے ہیں, بھائی بہن کیا کہتے ہیں, دوسرے رشتے دار وغیرہ کیا کہتے ہیں, تو ووٹنگ جب ہوگی تو پتا چلے گا نا, ورنہ نفس اور شیطان تو ہمیں ہمیشہ یہی کہیں گے تم سے زیادہ پیارا تو روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, تم تو بے عیب ہو. شیطان تو یہی کہے گا, ہمیں اپنے عیب تھوڑی نظر آتے ہیں. تو یہ اتنا خطرناک مرض ہوتا ہے ظلم کا, شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں یہ ظلم نہ ہو رہا ہو کسی نہ کسی انداز میں, دفتروں میں, فیکٹریوں میں, ہاسپٹلس میں. ہاسپٹلوں میں چلے جائیں تو ڈاکٹروں کا, ڈاکٹرس کا آپ کو ظلم نظر آئے گا مریضوں کے ساتھ, اس کی ایک الگ تفصیل ہے. اسی طرح تعلیمی اداروں میں ظلم آپ کو نظر آئے گا, کتنے آج کل زنا کے اڈے بن چکے ہیں, کوئی ایجوکیشن سسٹم, کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی بولنے والا ہے, اس کے بعد ان کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ وغیرہ, پھر ان کی مووی بنا کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں. آئے دن اخبارات میں, ٹی وی پہ آتی رہتی ہیں چیزیں, تو وہاں بھی ظلم چل رہا ہے, ہاسپٹلوں میں بھی ظلم چل رہا ہے. اسی طرح جیل خانوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو سینکڑوں ہزاروں ایسے قیدی نظر آئیں گے جو صرف ملزم ہیں, ان پہ الزام لگا اور جرم ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوا, چلان بنا کے کبھی پیش ان کو آگے کیے گی نہیں ہے عدالت میں, بےچارے کو پانچ پانچ دس دس سال اور بعض تو پندرہ پندرہ سال سے ایسے ہی سوڑ رہے ہیں, ان پر جرم ہی ثابت نہیں ہوا. کون بولے گا؟ کتنی سخت خواتین پورے پاکستان سے لڑکیاں اغوا کر کے اور پھر جسم فروشوں کو بھیج دی جاتی ہیں, اس بارے میں تو نہ کوئی اخبار میں کوئی بولتا ہے, نہ کوئی بیان کرتا ہے, نہ اس طرح کوئی توجہ دیتا ہے. یہ ہزاروں کا معاملہ ہے سب سالانہ طور پہ. تو کس قدر ظلم چل رہا ہے اس سب, ڈکیتیاں وغیرہ الگ چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں سامنے, پیسہ بھی چھینتے ہیں ذرا سی مزاحمت کی یا نہیں بھی اگر کی تو اڑا دیا لاش گھر گرا دی فوراً. اس کے بعد زنا بل جبر کا الگ ظلم چل رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. آج کل اخبارات پڑھیں, ٹی وی دیکھیں تو پتا چلتا ہے کیا تباہی بربادی مچی ہوئی. اسی طرح مری ہوئی مرغیاں بیچنا, گوشت بیمار جانوروں کا یا مرا ہوا گوشت گائے کا بچے کا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایمان والے جو صحیح چیز دیتے ہیں, لیکن پروفٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو ظلم مختلف انداز میں, مختلف جگہ, مختلف نوعیتوں میں نظر آئے گا. اور سب سے زیادہ جو ظلم بھائی آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے, کہ شادی ہو کے جاتی ہیں بیچاری وہ نئی نئی یا پرانی جو بھی ہوتی ہیں, کہ بس ساس نندے سب سے پہلے ان کا سواگت کرتی ہیں, ان کا استقبال کرتی ہیں, تو جینا حرام کر دیتی ہیں. ये सब नहीं लेकिन अक्सरियत एवरेज जो है बहुत इस वक्त बुरा चल रहा है। इतने फोन आते रहते हैं और वो एक नहीं कि आंसुओं से फूट फूट के लड़कियां औरतें रो रही होती हैं कि 2-2 महीने नहीं भेजते माओ के घर, और अगर जाते भी हैं तो कहते हैं मैं साथ जाऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा, साथ लेकर आऊंगा, मेरे साथ जाओ मेरे साथ आओ। एक खातून का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे शौहर बाहर होते हैं तो रोजाना कहते हैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखाओ सब, तो घर के अंदर कौन है, कोई दूसरा तो नहीं है। ये आप लबल गए, इतने शक है तुम्हें कि घर में कौन है तो छोड़ा क्यों था, क्यों गए बाहर, किसने कहा था फॉरेन कंट्री जाओ, नहीं रहोगे। और फिर अगर उन्हें बताया कि घर में अपनी माँ को रखती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस कहने अगर वो देख लेते मेरी मेरी माँ मेरे घर में तो एक हफ्ते तक बातचीत नहीं करते और खर्चा भी नहीं भेजते कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारी माँ का आना। ये तो क्योंकि छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये तो वरना ऐसे ऐसे जराय में ऐसी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं और ऐसे प्यारे मुहज़्ज़िब लोग नजर आते हैं, कोई जज नहीं कर सकता उनको देख के इतने खतरनाक है अंदर से। तो ये जुल्म का जो मात है ना ये बड़ा खतरनाक होता है, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अल्लाह ना करे हम में से कोई जाने अनजाने किसी न किसी के साथ जुल्म करने का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा। इसी तरह बच्चों की नाफरमानियां जो होती हैं वालिदैन के साथ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा फिर उसके बाद विलादत की तकलीफ उठाई, दो नंबर तीन फिर 2 साल तक खूने जिगर पिलाया अपना दूध पिलाया, ये 3 स्टेजेस होगा ना, इसलिए माँ के 3 दर्जे होते हैं। ये तकलीफ बाप ने नहीं उठाई, खुद बेचारी माँ रात भर जाके उठ उठ के देखती रहती है बच्चा पैदा होता ना छोटा होता कहीं इसका जो इसने कहीं पेशाब तो नहीं कर दिया, फिर उसको आधी रात को उठ के देखती रही, नींद खराब कर करके उस बच्चे को देख रही है। और फिर एक अरसे के बाद अपना खूनी जिगर पिला पिला के जब वो जवान होता है तो माँ से कहता है तमीज से बात करना मेरे साथ, थप्पड़ तक मारा है। अभी एक लड़की ने 15-16 साल की लड़की, माँ का फोन आया, रो रही थी कि वो फजर की नमाज के लिए नहीं उठ रही थी और कई दिनों से छोड़ रही थी, स्कूल भी नहीं जा रही थी, हर वक्त मोबाइल, वजह क्या थी कि मोबाइल हाथ में चल रहा है वो पूरी पूरी रात, बच्चे बच्चियां सब देख रहे हैं, बच्चे बच्चे को क्या बोलो, आजकल आजकल तो बुजुर्ग और बुजुर्गियां भी देख रही हैं भाई, इस मोबाइल ने तो किसी उम्र के लोगों के तबकों को नहीं छोड़ा, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लोग मोबाइल में देखे लगे हुए रहते हैं, भाई क्या चीज है देख रहे हो, हमें भी तो पता चले कि सुबह से लेके और रात तक सिर्फ वॉशरूम जाते वक्त या खाना खाते वक्त इससे फरागत होती है, वरना कोई मोबाइल छोड़ने पर तैयार नहीं है, और छीनने की कोशिश करो समझाओ तो कोई सुनता ही नहीं, जबरदस्ती करो तो फिर देखें आप तबाही। एक और खातून ने बताया कि उनकी बेटी से मोबाइल छीन लिया नहीं मानी वो, तो फिर लड़की किचन में उसने छुरी लेकर जिसम को 4-5 जगह से कट मार दिया और कहिए तुमने मुझसे मोबाइल लिया ना, ठीक है अब देखो मैं अभी क्या करती हूँ अपने साथ। बेचारी माँ वही डर गई, पैरों में पड़ गई और मोबाइल दे दिया, गले बेटा तू देख जो तुझे देखना है जो तेरा दिन चाहे। तो ये पता नहीं इस वक्त माशरे में कितना जुल्म इस वक्त चल रहा है, और माँ बाप का भी बहुत बड़ा जुल्म है, सबसे बड़े मागरत के साथ सब नहीं लेकिन अक्सरियत वालदैन की जो अपनी औलादों को तबाह बर्बाद कर रही है। मिसाल के तौर पर जो किसी ने अपनी औलादों को खुला माहौल दिया, आजाद दीन से दूर रखा हुआ है, लड़के लड़कियों को बिल्कुल आवाज छोड़ दिया, उनको फासिखाना और जो इस तरह का शरीयत और सुन्नत के खिलाफ का जो माहौल दिया, तो उससे होगा क्या कि बेचारे जो औलादे जो वो जवान होगी तो गहरी बात है वो तो गंदगी उनके अंदर पक्की हो चुकी है, तो वो फासिक फाजिर बनेंगे, जब फासिक फाजिर बनेंगे तो अल्लाह की पकड़ भी आएगी, अल्लाह के अजाब भी आएंगे दुनिया और आखिरत में, तो फिर वो औलादे दुनिया और आखिरत में उन पर परेशानियां और बलाएं आने का अंदेशा है और आएंगी गुनाहों की वजह से। तो ये माहौल किसने दिया, माँ बाप ने, तो जुल्म कौन कर गया, जाने सही अनजाने में सही वालदैन। तो हम लोग ये नहीं देखते कि जो हम उनको खुश करने के लिए जो हम उनको माहौल दे रहे हैं वो बहल तो रहे हैं खुश तो हो रहे हैं लेकिन भाई ये उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह की पकड़ आएगी इनके ऊपर, ये लोग नहीं सोचते, ये लोग नहीं सोचते। बहरहाल तो जुल्म की जो डेफिनेशन उसका दायरा इख्तियार बहुत वसी और बहुत बड़ा है, तो कहां तक बयान करें, बस अलमिया ये है कि कोई जालिम अपने आप को जालिम मानने के ऊपर तैयार तैयार नहीं होता, वो कहेगा जी मैं ये भी तो ये अच्छाइयां भी तो करता हूँ, तो उसकी अच्छाइयों की तरफ ही अपना दिमाग और दिल उसका लगा रहता है। अब चाहे आदमी कितने ही दीनदार हो, कितने ही नमाजी परहेजगार हो, कितने ही मुत्तकी बिलफर्ज अगर हो भी हो और कितना ही नेक क्यों ना हो, कुरान जिक्र अस्कार करने वालों, लेकिन अगर इस मर्ज में अगर मुबतला होगा तो सीधा जहन्नम रसीद जाएगा, सीधा जहन्नम रसीद रसीद करेंगे अल्लाह का। ये नमाज और ये कुरान जिक्र अस्कार ये दाढ़ी टोपियां हमारे काम नहीं आएंगी, दलील भी सुन लीजिए। एक बार सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनका चारों खुलफाए राशिदीन के बाद मुकाम में इनका नंबर आता है, और सहाबा कराम इनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि इनका चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशावे था। तो एक बार ये अपने गुलाम की ममलूक की पिटाई कर रहे होते हैं, इत्तफाक से हमारे प्यारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे होते, नजर पड़ गई, देखा तो बहुत बुरी तरह मार रहे हैं उसको, अपने गुलाम को। बस एक आवाज लगाई, ए अबा मसूद एक बात याद रखना, जितनी कुदरत तुम्हें गुलाम के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा कुदरत अल्लाह को तुम्हारे ऊपर है। मेरा लफाजों पे गौर कीजिए कि तुम ये सोच के किसकी पिटाई करो ना कि मैं इसका आका हूं, मेरा गुलाम है, मेरा घर खरीद है, जो चाहे मैं इसके साथ कर सकता हूँ। तो डरा रहे हैं आप सलम, देखो जितनी तुम्हें कुदरत इसके ऊपर है उससे कहीं ज्यादा कुदरत अल्लाह को तुम्हारे ऊपर है। क्या मतलब? अगर अगर अल्लाह को जलाल आ गया, अल्लाह अगर गजब में आ गया तो तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। तो देखना चाहिए, हम किसी का अगर जुल्म कर रहे हैं तो ऊपर वाली जात हमें देख रही है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा के तशरीफ ले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वो जब देखा मुड़के तो आप सल्लम जा चुके थे। बस थोड़ी देर बाद पहुंचे और शान रिसालत के दरबार में आप सल्लम की खिदमत में दस्तमा फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लम आपकी इस बात ने मुझको हिला के रख दिया और मैंने अल्लाह से माफी मांगी और तौबा मैंने करी और मैंने अपने उस गुलाम को फौरन आजाद कर दिया। अब जवाब सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने बहुत अच्छा किया अबा मसूद, एक बात याद रखना अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जहन्नम की आग तुम्हें झुलसा देती। किसको कह रहे हैं? सहाबी रसूल को, जिनका नंबर पांचवा आता है मुकाम में असलम के मुशाबे। क्या उनका ईमान और यकीन, क्या उनका तकवा होगा, क्या तहारत कलबी उनकी होगी, क्या उनके मामलात होंगे माशाल्लाह। उनको क्या, अपने सहाबी को क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हें जहन्नम की आग तुम्हें झुलसा देगी, कि सहाबी होना भी मेरी सोबत में रहना भी तुम्हें नहीं बचा पाता। किस वजह से? जुल्म की वजह से, गुस्से की वजह से। तो भाई आज किसका मुंह है कोई बोले कि मैं तो इतनी तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं चलेगा। एक बिल्ली का वाक्य भी है। एक औरत थी नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार मुत्तकी। ये बड़ी अहम बातें हैं, इंशाअल्लाह ये बातें हमारे दिलों में डाल दें। हमने दीन को दो चार अमाल का एक वो समझा हुआ है शायद नमूना के, दो चार अमाल में पूरा दीन आ गया, ऐसा नहीं। कहीं औरत को जाना था, बिल्ली थी उसके घर में, उससे गलती हुई कि बिल्ली को बांध के चली गई। अब गहरी बात है, बांध के जाने का क्या मतलब हुआ कि अब वो अपना शिकार नहीं मार सकती, वो कई दिन के लिए उसको जाना था, चली गई वो बिल्ली। क्या हुई? तड़प तड़प के भूख से मर गई। बस अल्लाह की तरफ से मुकदमा चल गया कि तुमने बिल्ली को बांधा क्यों, आवाज क्यों नहीं छोड़ा, आवाज छोड़ दी जरूर से कहीं भी खाना खा लेती, वो अपनी खुराक उसको मिल जाती, तो मुकदमा चला तुमने उसको बांधा क्यों, जिससे वो बिचारी तड़प तड़प के मर गई। तो वो नमाजी तहज्जुद गुजार औरत एक बिल्ली के ऊपर अनजाने में जुल्म करने की वजह से जहन्नम रसीद हुई। अल्लाह ने नमाजें हमारी उसकी इबादत नहीं देगी, कितना तकवा था उसके अंदर। एक बिल्ली के साथ ज्यादती के ऊपर, यहाँ नमाज कुरान का कोई जिक्र नहीं, सब खत्म। इसी तरह दूसरी तरफ एक फाहिशा औरत थी और जिस्म की फरोख्त किया करती थी, इतनी बुरी औरत है ना। यहाँ अल्लाह क्या दिखाना, ये सारे वाकयात हम पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। उसके बाद गुजर रही थी, उसने देखा कुएं के पास एक कुत्ता, गर्मी का वक्त है और वो तड़प रहा है प्यास से, लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा। गहरी बात है, कुएं तो नीचे पानी होता है कुएं के अंदर। उसने बहरहाल अपने चमड़े का मोजा था कोई, उसमें से वो रस्सी वगैरह डोल टाइप बना के उसने पानी जैसे तैसे करके मशक्कत से निकाला पानी और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते की शराबी हो गई बहरहाल। तो फिर ये वाकयात आप उसने बताया कि वो औरत जो फाहिशा थी, अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। नमाजी नेक औरत बिल्ली पे जुल्म की वजह से जन्नत रसीद हो रही है, फाहिशा औरत कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत में जा रही है। तो ये पता है क्या चला, रहम दली और जुल्म क्या चीजें होती है कि जब ये होती हैं तो फिर अल्लाह पाक की शान रहमत ऐसी जोश में आती है, फिर कोई अमाल नहीं देखे जाते, फिर डायरेक्ट फैसले होते हैं जन्नत और जहन्नम के। हजरत मौलाना शबरी थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान अल कुरान की तफसीर लिख रहे थे, सुबह का वक्त था तकरीबन फजर के बाद। उनकी अहली हमारी शेखानी साहब को कहीं जाना था, तो जाते वक्त बोल गई कि मैं जा रही हूँ घर, अभी थोड़ी देर में आती हूँ, सौदा सल फकरा लेने या कहीं किसी के घर जा रही होंगी, तो ये थोड़ी देर में ये दड़बा खोलना और कबूतर इसके अंदर है, कबूतरों को दाना डाल देना। अब वो इतने बड़े मुजद्दिद, वो क्या दाना डालते भूल गए। गहरी बात है, बयान और कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, अल्लाह की तरफ से कश इनाम हो रहा है, उसकी तफसीर लिख रहे हैं। हुआ क्या, अचानक थोड़ी देर के बाद उनके कल्ब के ऊपर जो मजमी की बारिश हो रही थी, अलका हो रहा था, वो सब बंद, सब खत्म, परेशान हो गए। अल्लाह वालों को पता चल जाता है कि अल्लाह से राब्ता डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन ये किसको पता चलेगा? जिसका राब्ता होगा तो पता चलेगा ना डिसकंटिन्यू होगा, जिसका राब्ता ही नहीं उसको क्या पता चलेगा डिसकंटिन्यूएशन क्या होता है। अब जो बेचारे जिनको लाइट नसीब ही नहीं, उनको क्या पता रोशनी क्या होती है, उधर रहती है अंधेरों में, अंधेरों अंधेरे का अंधेरे की वहशत अगर देखनी हो तो उनसे मालूम करें जो रोशनी में जीते, जब लाइट जाती है तो एकदम से घबरा जाते हैं। बिल्कुल यही मामला होता है, अल्लाह वालों के कल्ब में एकदम से लोड शेडिंग हो जाती है, अंधेरा आ जाता है जुल्मत का, पता चल जाता है कि मामला खत्म हो गया अल्लाह से, मजमीन की आमद खत्म हो गई, सोचे जा रहे हैं क्या लिखूं, कलम चल ही नहीं रहा। फिर अल्लाह से फरियाद करिए, अल्लाह वालों का तरीका है ये, जो कुरान हदीस से साबित है, कोई भी मामला आउट ऑफ टर्न हो फौरन आदमी देखे क्या बात अल्लाह को बुरी लगी है जिसकी पादाश में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इत्तफाक से कुछ नहीं होता, बस थोड़ी देर में अल्लाह की तरफ से उन पर हल्का हुआ कि हमारी मखलूक दड़बे के अंदर बने और भूख से तड़प रही है और तुम हमसे उम्मीद रखते हो हम मजमीन का हल्का करेंगे और तुम हमारे कुरान की तफसीर करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। फौरन एकदम से याद आया कि वो मेरी जो अहलिया वो तो बोल के गई थी और मैंने कबूतरों को दाना नहीं डाला, बेचारे उठे फौरन और कबूतरों को बाहर निकाला, उनको अच्छी तरह खिलाया पिलाया और उसके बाद थोड़ी देर में उनको बंद कर दिया और फिर दोबारा आके बैठे। जैसे आके बैठे मजमीन की आमद शुरू, बारिश शुरू। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये कुत्ते बिल्ली कबूतर के ऊपर मामला अल्लाह लेके बैठे, तो अल्लाह की अदना मखलूकात जानवर हैं ये, इनके साथ इतने बड़े बड़े मामला, अल्लाह के इतने बड़ी मुजद्दिद मिल्लत कहते हैं कि अल्लाह पाक सदी में एक मुजद्दिद ऐसे वली को भेजता है जो मुजद्दिद कहलाता है उस मुकाम के, लेकिन सिर्फ कबूतरों के साथ अनजाने में भूल चूक हो गई थी, जानबूझ के तंग नहीं किया था उनको, जमीन की आमद रोक दी अल्लाह ने, कर लो तुम लिख लो तशरीह कर लो बयान। तो ये क्या चीज है, यहाँ अल्लाह पाक छोटे छोटे वाकयात के थ्रू क्या दिखा रहे हैं। तो जब जानवरों के साथ जुल्म ज्यादती करने के ऊपर ये मामला है तो भाई जो लोग इंसानों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं उनका क्या हशर होगा, उनकी कितनी अल्लाह की तरफ से पिटाई लगेगी। जो माँ बाप के नाफरमान है, माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, बाप को थप्पड़ मार देते हैं, लोग कितने फोन आ रहे हैं बाप को थप्पड़ मार दिया, बाप लोग तो कतल तक बारात में पड़ते हैं, कतल तक कर रहे हैं माँ बाप को, उन बेचारों का क्या हशर होगा, जुल्म की इंतहा। तो कितना ये दायरा इस वक्त वसी चल रहा है जुल्म सितम का, एहसास भी नहीं। कितनी खवातीन के फोन आते हैं, बीवी बेचारी को मशवरा देती है, अच्छा मशवरा भी देती है और वो गलत मामला शौहर कर रहा होता, वो बेचारी बिल्कुल सुन्नत शरीयत की बात की, शौहर साहब कहते हैं अपनी औकात में रहो, औकात में, मेरे मामला में डिस्कशन की जरूरत नहीं, तुम्हें हुकूक दे रहा हूं मैं रोटी पानी के, बस खामोश। भाई बीवी है कोई नौकरानी थोड़ी है, वो इस तरह का थोड़ी मामला होता, ये सुन्नत से साबित ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी मोहब्बत फरमाते थे हमारी माओ से, कभी पढ़े तो सही, हजरत बीबी आयशा सद्दीका ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जहां से जिस जगह से कुछ फल वगैरह खाती थी तो आप सल्लम उनको देख के मुस्कुराते थे, देखते थे उनको और उसी जगह से कट लगाते थे, वहीं से खाते थे जहां से बीबी आयशा हमारी अम्मा खाती थी। मोहब्बत जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये उम्मत को सबक है कि बीवियों से मोहब्बत करो। क्या कहां तक बयान करें, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी कुछ चार पांच माएं थी बैठी हुई थी अज़वाजे मुतहरात और जोर जोर से चीख चीख के बातें कर रही, और आप सल्लम को तो मिजाज माशाल्लाह, क्या शान रिसालत, क्या रहमत, आप मुस्कुरा के खामोश उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से गुजरे और फिर उन्होंने नाराजगी का इजहार फरमाया, ए मेरी माओ ये क्या तरीका है, ये रहमतुल आलमीन अल्लाह के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, के मुकाम को पहचाने आप, ये किस तरह से बेअदबी के साथ इनसे बातचीत कर रही, ऊंची ऊंची आवाज से चीख के, आप जरा नरमी से बात करें। अब हमारी माओ ने क्या जवाब दिया, ए उमर हमारा वास्ता तुम्हारे साथ नहीं पड़ा है, तुम सब मिजाज, हम जानते हैं हमारा वास्ता किससे पड़ा है, रहमतुल आलमीन है, पूरे आलम के लिए अल्लाह ने इनको रहमत बना के भेजा, हम जितना इनके साथ इनके ऊपर गालिब आने की कोशिश करेंगे या कभी ऊंची आवाज से ही बात करेंगे तो ये उतना मगरूब होंगे, दरगुजर का मोहब्बत का रहमत का मामला फरमाएंगे, इसलिए हमारी जरूरत बढ़ जाती है। क्या आप सल्लम की शान थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस शरीफ में फरमाया, दो तरह के शौहर होते हैं, जो जुल्म और सितम करके, वही बात जुल्म की फिर बात आ रही है क्योंकि आज मौजू ही जुल्म का है, तो कुछ लोग ऐसे शौहर होते हैं जो बीवियों पे जुल्म और सितम करके उनके ऊपर गालिब आ जाते हैं, गालिब दबा लेते हैं, कहते हैं ना महावरे में बिल्ली मार दी, वो बेचारी ठीक है भाई। लेकिन आप सल्लम क्या फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ के वो शौहर होते हैं जो बीवियों के साथ मोहब्बत और हुस्ने सुलूक के साथ, मोहब्बत से अखलाक से पेश आते हैं, उनकी खताओं को दरूगर करते हैं, तो अक्सर ऐसे शोहरों पर बीवियां गालिब आ जाती हैं। देवी आप सल्लम ने एक इशारा दे दिया बीवियों के मिजाज का, भाई अगर तुम ज्यादा अखलाक दिखाओगे तो बीवी गालिब आ जाएगी। लेकिन आगे बड़ा प्यारा जवाब देना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले किस्म के जो लोग हैं जो जुल्म और सितम करके बीवियों पर गालिब आ गए, ऐसे जो शोहर हैं वो लईम है, लईम लईम अरबी में कहते हैं कमीनों को। दरबार रिसालत से कमीने का लफ्ज उनके लिए इशू हो रहा है जुल्म की वजह से। और दूसरी किस्म के लोग जिन पर बीवियां गालिब आ गई, आप फरमा रहे हैं वो बहुत ही प्यारे और अच्छे नसीब शोहर हैं कि जिन पर बीवियां गालिब आ गई, और मेरा दिल चाहता है मैं दूसरे किस्म के शोहरों में रहूं। अब आप बताइए, आज बेचारा कोई जरा से बीवी से कोई मोहब्बत करता है फौरन कहते हैं घर वाले अरे ये तो जरूरी हो गया, पैर दबा ले जाके उसके पैर दबा ले, आया क्यों कमरे से, वहीं बैठा रहता ना, अम्मा बोलेंगी। तो भाई ये क्या बात है, 25-30 साल आपके साथ रह गया भाई, अब बीवी आ गई उसके बच्चे हैं, तो ये तो कुदरती चीज है, तवज्जो भी बटेगी वक्त भी बटेगा, तकसीम तो होंगी ना सारी चीजें, पैसे भी तकसीम होगी, कुछ खर्चा आपके पास कम आएगा, बी बच्चों में भी लगाएगा। अब यहाँ दिल को बड़ा रखना है सबको, तो ये चीज जो है ये समझनी चाहिए इन चीजों को, तो इतना खतरनाक मामला है, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कहीं अनजाने में हमसे जुल्म तो नहीं हो रहा। एक और हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बंदा है मोमिन के दिल को दुखाना, उसका दिल तोड़ना किसी भी अंदाज में काबतुल्लाह को शहीद करने से बड़ा गुनाह है। अब आप तस्वीर करें, कोई शख्स अगर जाके काबतुल्लाह को इस्तेमाल कर दे, तोड़ दे इसको, डिमोलिश कर दे, तो हम कितने इस पर फतवे लगाएंगे कुफुर के, और किस किस किसने तो काबतुल्लाह ही ढा दिया। लेकिन वो छोटा मल करार दे रहे हैं अफसल साहब, किसी बंदा मोमिन के दिल को तोड़ना काबतुल्लाह शरीफ को ढाने से ज्यादा बड़ा गुनाह। आज हम अपनी जबान से एहसास ही नहीं करते, कुछ लोग होते हैं कुछ खवातीन ऐसी भी मिलेंगी जो बेचारी नफ्सियाती हुई और उनका बाकायदा दिमागी इलाज भी चल रहा है अभी भी, और शौहर मारता भी नहीं है, गालियां भी नहीं देता, और जरूरियात की सारी चीजें भी दे रहा है, लेकिन हल्का हल्का टॉर्चर, हल्का हल्का टॉर्चर, उससे बेचारी वो मेंटली डिस्टर्ब होगी। अब फखर से कहता भाई मैंने क्या जुल्म किया, मैं मारता हूँ कोई, तुम्हें गालियां देता हूँ, सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड तो कर रहा हूँ, लेकिन तफसील सामने आई तो उससे अच्छा था भाई तो मार लेते पीट लेते वो अच्छा था। जिस तरह एक पानी के और पानी का कतरा पत्थर के ऊपर चट्टान पे गिरता रहता ना, फिर एक वक्त आता है उसमें सुराख हो जाता है मुसलसल, तो बहुत से शोहरों के अलग अलग अंदाज होते हैं टॉर्चर करने के, अजीब अजीब अंदाज, ऐसे ऐसे असल में ऐसे शोहर जो लोग होते हैं वो अक्सर खुद साइको होते हैं, तो वो बीवियों को भी अक्सर साइको ही बना देते हैं। और अक्सर में जो मेरे पास लोग हैं जो मुझसे बैद भी हैं, तो उनको मैं बहुत प्यार मोहब्बत से इस बात की इत्तला देता रहता हूँ, तकरीबन 2-3 साल से अक्सर जब गैदरिंग होती है, एक बार नहीं 70 बार इस बात की मैं बार बार निशानदेही करता हूँ, और इस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि भाई जिंदगी मौत का भरोसा नहीं होता अपनी जिंदगी में, बीवी बच्चों के नाम जो भी मामलात हैं वो तकसीम कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का, लोग अपनी मौतों का हम लोग सोचते ही नहीं, हम समझते हैं अभी कौन मर रहा है, हम थोड़ी मर रहे हैं भाई, अल्लाह ना करे अगर हम निकल गए दूसरे जहां में तो फिर बीवी का क्या होगा। कभी हमने सोचा, अक्सर जो बीवियां होती हैं हमारी वो फिर अपनी वालदा की तरफ से फाइनेंशियली तौर पे अक्सर बाग दफा स्ट्रांग नहीं होती कि शौहर के मरने के बाद उनके भाई और वालदेन संभाल लें, तो बाग जो अच्छी फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग भी होती है वालदेन की तरफ से तो वो भी नहीं पूछते शौहर के इंतकाल के बाद, तो ये जिंदगी में एक इत्तला होती है, इत्तला बता रहा हूँ, इत्तला है खाली, वरना भाई हमारी किसी पे कोई वो नहीं है, इख्तियार नहीं है किसी का, अकलमंदी वाली बात बता रहा हूँ, उससे दुनिया और आखिरत के आगाज से इंसान बचेगा। तो अपना बीवी का अकाउंट ज्वाइंट रखना चाहिए, कभी अल्लाह ना करे कि मुझे कुछ हो जाए, और ये बोलने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अमल कर चुका हूँ, इसलिए बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी मौत का पता नहीं होता, मैंने अपना वसीयतनामा भी लिख के दे दिया है, अपनी सर्विस बुक जहां मैं जॉब करता हूँ गवर्नमेंट जॉब में, वो सारी चीजों में नेक्स्ट ऑफ किन में मैंने अपनी मिसेज का नाम डाला है, ज्वाइंट अकाउंट किया हुआ है, क्योंकि जिंदगी मौत का कुछ नहीं भरोसा, कम से कम अपनी छत हो भले छोटी सी हो वो अपने नाम हो या बीवी के नाम हो जो भी हो, कुछ इस तरह का वसीयत हो कि आदमी को ये हो कि मैंने किचन सेव कर दिया, मैंने घर कर दिया, अगर मैं नहीं रहा कल को तो मेरे बीवी बच्चे सड़क पे नहीं आएंगे। ये वसीयत और विरासत की तकसीम फर्ज है जो अल्लाह पूछेगा, गलत अगर तकसीम कर दी विरासत सही अदा नहीं किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं बाज़ लोग सारी जिंदगी बहुत नेक और दीनदार होते हैं, वही बात जो आसन भी फरमा रहे हैं, बहुत नेक दीनदार बने रहते हैं, सारे मामला शानदार होते हैं, लेकिन मौत से पहले गलत वसीयत कर जाते हैं और वारिसीन को हक से महरूम करके मरते हैं और फिर वो सीधे जहन्नम में जाते हैं। नहीं नहीं का जहन्नम में जाने लफाजे सीधे डायरेक्ट फौरन सीधे जहन्नम रसीद करते हैं अल्लाह पाक उनको, इतना अजाब मिलता है उनको। तो विरासत में भी लोगों की मनमानी होती है भाई, कुछ चीजें ऐसी हो तो मनमानी नहीं होगी, वहां अल्लाह रसूल की मनमानी होगी। जिस तरह से अल्लाह पाक ने विरासत का हक हमें तकसीम करने को हुक्म दिया है, उस तरतीब से हमें तकसीम करना होगा। ये हमारी ख्वाहिशात नहीं है, जो प्यारा लगा उसको सारा दे दिया, जो असल औलादे जो अपने जो खास जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है उनको बिल्कुल ही जरा सा दे दिया, मामूली सा ना होने के बराबर, तो फिर कब्रें पिटती हैं। शदीद अज़ाब है ये। आजकल लोग भाई जो है वो बहनों की विरासत खा जाते हैं, कितने फोन आ रहे हैं, कितने खवातीन के बेचारे वो रो रही है बेचारी। हमारे पहले मैं जहां रहता था हमारे ब्लॉक एन के मोहल्ले में, वहां का वाकई खातून थी बेचारी, उनके अरबपति वो फैमिली वो और सब भाई वगैरह माशाल्लाह कारोबारी लोग, लेकिन वही बात कि शौहर का उनका इंतकाल हो गया, वालदैन का भी इंतकाल हो गया, और खातून के अच्छा शादी हो चुकी थी उनकी, उसके बाद भाई उन्होंने उनको विरासत नहीं, बच्चे बड़े होने लगे, फिर इतने माली हालात खराब हुए, उन्होंने बहुत पैसे मांगे कि भाई अब्बा की जो तकसीम है वो तो सही तौर पर मुझे दे दो, वही अगर दोगे तो करोड़ों रुपये बन जाएंगे। लेकिन ये कहा गया नहीं, आजकल कारोबार में बह खसारा बहुत चल रहा है, लॉस चल रहा है, इसकी मैं हम लोग नहीं कर सकते। तो वो क्या करती थी, किराए के दो कमरे के फ्लैट में वो करोड़पति अरबपति औरत अपने बच्चों को लेके सिलाई कढ़ाई करती थी, और यहाँ तक के बच्चे छोटे छोटे बच्चे बाले हो गए जवान हो गए बाहर चले गए पढ़ाया लिखाया कहीं से कहीं पहुंचे थे। ये वो खानदानों का बता रहा हूँ जिनके माँ बाप जिनके भाई बहन वगैरह पैसे वाले थे, लेकिन वही बात कि उनकी विरासत सही तकसीम हुई नहीं थी, भाई सारी जायदाद हड़प कर गए। इसी तरह विरासत की सही तकसीम नहीं होती, इसी तरह प्रॉपर्टीज पे अलग कब्जा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अगर किसी ने किसी की जमीन पर एक बारिश कब्जा किया, एक हाथ एक बारिश, जमीन के 60 हिस्सों तक उसे नीचे धसाया जाएगा, धसाया जाएगा। आज तो लोग भूले हैं ना हम लोग मौत को, कब्र को, हशर को, हर बंदा अपना होल्ड रखना चाहता है, होल्ड जायज और नाजायज कि बस मेरे मफादात जो है ना उस पर कोई आंच ना आए, भले मेरी कब्र पिटे, अल्लाह का अज़ाब आए, मेरा होल्ड ना खत्म हो। भाई अल्लाह का होल्ड जो है ना वो देखना चाहिए कि अगर अल्लाह ने होल्ड कर लिया ना हमें बस, तो फिर पता चल जाएगा। तो जिंदगी में अपनी जो विरासत के सारे मामला को क्लियर एंड कट वाजे, इसका किसी वकील साहब से मशवरा करके सारी चीजों की तकसीम वगैरह करके जो शरई तौर पे मामला होते हैं वो सारे के सारे जिंदगी में कर ले, मौत का कुछ नहीं भरोसा। 25 साल पहले मेरा एक दोस्त था फैसलाबाद का, बहुत ही प्यारा दोस्त था, अल्लाह उसको गरी के रहमत करे। तो उसने स्टेट एजेंसी का काम शुरू किया, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत अल्लाह ने उसको नवाजा। नई नई शादी उसकी हुई थी, उसके 2 या 3 बच्चे थे, लेकिन वो छोटे भाई को बहुत चाहता था वो, तो जो कमाता था छोटे भाई पे लगाता था। तो हम लोग दोस्त उसको सब बोलते थे, देख भाई तू सब कुछ कमा करो, तुम सब कुछ कोई मना नहीं कर रहा, माँ बाप को भी दो, बहन भाइयों को भी दो, मना थोड़ी है, लेकिन बीवी बच्चों के लिए तो कुछ करो। अब उसका किराए का फ्लैट, मैं कहता था देखो तुम्हारा फ्लैट भी किराए पर, अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी मिसेज का क्या होगा, भाभी का क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे। कह रहे अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरे घर वाले जो मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ, क्या वो नहीं करेंगे अगर मुझे कुछ हो गया, बस अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। इत्तफाक से ये हुआ, मुझे डर रहता था, मैं उसको कहता रहता था, वही हुआ। एक रात में सोया कोई बीमार नहीं, सुबह उठने से बाद इंतकाल हो गया, और उम्र कितनी 30-32 साल। अब हुआ क्या कि जब वो रोना पीटना मचा बहरहाल, तो थोड़े दिन जब सबर आया सबको, तो फिर अब कहा भाई क्या होगा इन खातून को और बच्चों का, तो कुछ खानदान के लोगों ने कहा उसके छोटे भाई से, देखो भाई तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बहुत चाहता था और बड़ा तुम पे उसने खर्च किया और तुम्हें इस काबिल किया, तो तुम अपनी भाभी से शादी कर लो, तो बच्चों को चचा की सूरत में बाप भी मिल जाएगा और बेहतरीन मामला हो जाएगा। तो उसने कहा वाह मैं तो कुंवारा और ये 2-3 बच्चों की अम्मा, क्यों भाई मेरे सर में क्या फोड़े निकलेंगे, मेरे सर में क्या फोड़े निकलेंगे। और फिर वो पता चला कि उस औरत ने घरों में जाके मासी बन के काम किया उसने, क्योंकि वो फाइनेंशियली तौर पे पीछे से स्ट्रांग नहीं थी वो खातून। फिर नहीं पता हमें उसके बाद फिर क्या हुआ। तो ये आए दिन हम देखते रहते हैं लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती। तो हमें जिंदगी का, मौत का, हम लोगों का किसी का नहीं पता, तो अपने मामला हम जिंदगी में दुरुस्त करने की कोशिश करें। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि देखो दुनिया में जीते जी लेन देन के मामला, जुल्म सितम के मामला, पैसों के मामला, प्रॉपर्टी के मामला, गीबत के मामला, जो भी हम हमारी जात से जिसको भी जाने अनजाने जानी माली जिस तरह का भी हमसे जाने अनजाने अगर नुकसान हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं खुलासा हदीस है कि दुनिया में जीते जी उससे माफ करा लो जब तक जिस्म के अंदर रूह है, सांस है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं पता कब मौत आ जाए, क्योंकि अगर यहां मामला साफ नहीं किए तो कयामत वाले मुकदमा चलेगा और फिर तुम वहां से बच नहीं सकते। तो अकलमंदी का तकाजा है कि दुनिया में अपने मामला को दुरुस्त कर लो जीते जी, इससे पहले कि मौत का शिकंजा आके हमको पकड़ ले। किस किस तरह से आप सबसे इरशाद फरमा रहे हैं। तो जुल्म पे बात चल रही है, एक शख्स था कारोबारी आदमी था, उसने अपने मुलाजमीन को कहा था कि अगर कोई कर्ज पर कोई चीज लेना है तो दे दिया करो, और अगर बिलफर्ज कर्ज पे कोई लेके जाता और आके वो बोले कि भाई मैं कर्ज भी नहीं चुका सकता, मैं नहीं दे सकता, आपको नुकसान हो रहा है मुझे और मैं नहीं दे सकता, तो फिर उसको माफ कर दिया करो। और कोई इसकी नेकी नहीं थी, कोई ऐसी खास इंतकाल हुआ तो यह हदीस शरीफ का खुलासा है, अल्लाह कभी भी इसी माफ फरमाए, मनकुल यही है कि फिर उसके बाद जब मुकदमा चला अल्लाह ने जब जन्नत में डाला तो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा अल्लाह मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने कभी कोई नेक अमल किया हो, लेकिन आज तूने अल्लाह मुझे जन्नत में भेज दिया, मेरी नेकी तो बता मैंने किया क्या। तो अल्लाह ने फरमाया बेशक तेरे अमाल तो ऐसे नहीं थे, लेकिन हमें तेरी गदा पसंद आ गई कि तूने सहाबत का रहम दिली का मुजहरा किया, तूने जुल्म सितम नहीं किया कि तूने अपने मुलाजमीन को कहा हुआ था ना कि जो कर्ज मांगने आया उधार पे चीज लेके जाना चाहे उसको दे दिया करो और जो ना दे सके उसको माफ कर दो। तो माफ करना दरगुजर करना तो मेरी सिफत है, तो तू मेरे काम में लगा हुआ था, तू क्या मुझसे ज्यादा सखी है, जा मैंने भी तुझे माफ किया, जा मैंने भी तुझे माफ किया। तो ये जुल्म नहीं किया उसने, तो कहां से फिर ये मामला तो उसके शानदार हुए। यहां तक आप ने इरशाद फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की आह से उसकी बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान किसी किस्म का कोई हिजाब पर्दा नहीं रहता, डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो अल्लाह तक जाती हो फरियाद। हजरत अली करम जैसे भी रिवायत एक हदीस पाक कि आप सदरत में इरशाद फरमाया कि जब कोई मजलूम किसी के दिल से आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है, तो वो उसकी जो आह होती है बद्दुआ वो अल्लाह पाक बादलों से ऊपर तक उठा लेते हैं और फिर अल्लाह जवाब देते हैं कि ए मेरे बंदे मैं लाजमी और हर हालत में तेरी दाद रसी करूंगा और इस बंदे से इंतहाम लूंगा अगर मेरी किसी मसलियत की वजह से भले कुछ देर भी हो जाए। तो एक और हदीस शरीफ में आप ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने बात कहलवाई है कि ए बंदो अगर तुमने किसी ऐसे शख्स के ऊपर, ऐसे इंसान के ऊपर तुमने जुल्म किया जिसका मेरे सिवा कोई नहीं था, तो तुमने मेरे अजाब को और मेरे गजब को तुमने बहुत भड़का दिया। फिर कि तुम ऐसे शख्स के ऊपर, ऐसे इंसान के ऊपर जुल्म करते हो जिसका मेरे सिवा कोई नहीं है, फिर अल्लाह कह रहे हैं तुमने मेरे गजब को भड़का दिया, अब इंतजार करो मेरा अजाब आएगा, मेरी पकड़ आएगी। तो आज कितने जुल्म के मामला हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो जुल्म के ऊपर तकरीबन ये 18-20 अहदीस शरीफ मुझे याद थी तो मैंने लिख ली थी, मैंने कहा इसलिए क्योंकि बयान ये रिकॉर्ड होता है तो ये रह ना जाए। इसी तरह एक हदीस शरीफ आप सुनने इरशाद फरमाया कि जालिम को अल्लाह पाक मोहलत देते रहते हैं, लेकिन जब पकड़ते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि वो छोड़ते नहीं है, फिर उसको छोड़ते नहीं है। इसी तरह जो शख्स किसी जालिम के साथ इस नियत के साथ चला, चलने से मुराद यदि उसका साथ दे रहे हैं, उसका मकसद ये कि जो जुल्म कर रहा है मैं इसका राइट हैंड बनूं, उसका दस्ते बाजू बनूं और उसको कुव्वत दूं उसके जुल्म में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि वो आपस में फरमाया वो इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से उतार लेता है, यानी वो काफिर हो गया। बताइए कि साथ देने के ऊपर है, जो जुल्म कर रहा होगा उसका क्या अजाब होगा उसके ऊपर, ये तो साथ देने के ऊपर है। आज लोग जुल्म कर रहे होते हैं जैसे, तो हम तो उसको रोकने के बजाय बल्कि कहते हैं हाँ तू सही है इसको मार, इसको मार, सही है, जुल्म का साथ देते हैं। हम लोग तमाशा देखते हैं, हम लोग बीच में आके हक का साथ नहीं देते, नहीं तुम गलत हो, हमें मर के अल्लाह के पास जाना है, कब्र में अल्लाह को जवाब देना है, ये चीज यूं नहीं ऐसे, ये कौन बोलेगा, जो अल्लाह का डर जिसके अंदर होगा, अल्लाह का खौफ जो रखता होगा। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह। और एक और हदीस शरीफ जो लोगों के कसूरों का माफ नहीं करता, किसी से कोई ज्यादती हो गई अब वो इंतकाम की आग में जल रहा है कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, बदला दूंगा मैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो लोगों के कसूरों का माफ नहीं करता अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा दुनिया में आखिरत में। अब हम सोच ले भाई, अगर हम बदला लेंगे तो फिर अल्लाह कह रहे तुम भी तो मेरे कहीं ना कहीं गुनाहगार हो, मैं भी तो माफ करता हूँ, मैं भी तो दरगुजर करता हूँ, तो मेरी सिफत क्यों नहीं अपनाते हो, तुम भी माफ करो लोगों, तुम क्यों जुल्म करते हो, तुम क्यों इंतकाम लेते हो, तुम क्यों बदला लेते हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मेरे गुनाहगार हो, मैं भी इंतकाम लूंगा, मैं भी बदला दूंगा तुमसे। तो अकलमंदी का क्या तकाजा भाई, हम अल्लाह से क्या चाहते हैं, ये ना कि अल्लाह हमारे गुनाहों पर हमें माफ कर दे, दरगुजर कर दे और नेमतें वैसी देता रहे और अल्लाह पाक दरगुजर का मामला फरमाए। तो उसका अल्लाह की रहमत इस तरह से अपनी तरफ मुतवज्जा करने का उसूल फार्मूला ये है कि हम उसके बंदों से जो खताएं हो जाती है उसको भी माफ करें। ये अल्लाह की सुन्नत है, जो हमें बंदों के साथ भी उसी सुन्नत के हिसाब से लेके उनको लेके चलना पड़ेगा। बहुत खराबी बर्बादी है उन लोगों के लिए जो जानबूझकर अपनी जिद अना गलती पर जमे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात छोड़ी हमारे आका ने, कि बहुत ही बर्बादी हलाकत और खराबी उन लोगों के लिए, मैं ना मानूं जिनके अंदर अकड़ का, तकब्बुर का, हुक्मरानियत का मादा है। उनको 70 लोग कह रहे होते हैं आप गलत है, वो कहते हैं नहीं मैं सही हूं, अपनी अना और जिद के ऊपर जमे रहते हैं। आप सलम क्या खबर दे रहे हैं, क्या वही फरमा रहे हैं, बर्बादी और हलाकत है, खराबी है, बर्बाद होंगे। अरे भाई मान जाओ कि आप सही नहीं हो, नहीं अना और अकड़ उनको इजाजत ही नहीं देती, मानते ही नहीं मैं सही हूं। तो फिर जब किसी से इसलाह नहीं होती फिर अल्लाह पाक अक्सर बताता रहता हूँ, फिर बरह रास्त अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट इसलाह होती है। फिर उसमें बाग दफा चीखे मारने की नहीं, चीख भी नहीं निकलती। तो अकलमंदी का तकाजा ये है कि अपनी आदमी इसलाह करवा ले किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करके जहां मुनासबत हो। सवाल ये नहीं गुनाह क्यों हो रहा है, हमारे अंदर हम रागे रजीला कहलाते हैं, गुस्सा है, तकब्बुर है, जुल्म करना, बदनजरी, गुनाह, इस तरह की सारी चीजें हम रागे रजीला और आम अल्फाज में गुनाह कहलाती है। तो अगर आदत है हम लोग मुलविस है, तो सवाल ये नहीं है कि हम सब गुनाहगार हैं, मैं भी गुनाहगार हूँ, कोई शख्स नहीं बचा हुआ, उस पर अल्लाह की पकड़ अजाब नहीं आता। पकड़ अल्लाह की अजाब उस सूरत में आता है कि तुम्हें मालूम है तुम ये गंदा काम करते हो, तुम्हें अपनी इसलाह की तौबा की फिक्र क्यों नहीं है, उस पर पकड़ होती है, गुनाह पर पकड़ नहीं होती है। बड़ा बारीक नुकता है, लोग 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक गुनाह करते रहते हैं, उनको ना इसलाह की फिक्र होती है, ना तौबा की फिक्र होती है, फिर पकड़ आती है अल्लाह की, गुनाह पर आती तो फौरन आ जाती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम हुक्मरानों को बददुआ दी कि अल्लाह ये जो जालिम हुक्मरान होते हैं अगर ये उम्मत के ऊपर, मेरी उम्मत के ऊपर जुल्म करें और ऐसे सख्त फैसले करें तो रसूलुल्लाह बददुआ दे रहा है, ए अल्लाह तू भी इनके साथ सख्ती का मामला फरमा। जालिमीन के लिए बददुआ दे रहा है, ये जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उम्मत पर, तो अल्लाह तू भी इनके ऊपर ऐसा जुल्म कर, तू भी इनके ऊपर सख्त हो जा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया के ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह फरमाए ए मेरे प्यारे बंदो, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दे दिया कि मैं जुल्म नहीं करता किसी के ऊपर, तो तुम भी अपने दायरे अख्तियार में जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म मत करना, उनके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आना। किस तरह से अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, इसी तरह सुल्म फरमा रहे हैं, जालिम की दुआ कबूल नहीं होती, ना उसकी तरफ से बारिश होती है, यानी जब वो बारिश की दुआ मांगेगा ना कबूल होगी, ना खुदा की तरफ से उसकी कोई मदद की जाएगी। बताइए आप कि ना उसकी दुआ कबूल होगी जालिम की और ना उसकी अल्लाह की तरफ से उसकी मदद की जाती है। इसी तरह आप ने फरमाया कि जालिम की जो नेकियां होती हैं, जालिम की नेकियां मजलूम को दी जाएंगी, हदीस शरीफ में हशर वाले दिन जालिम की नेकियां जो अगर होंगी तो वो मुंतकिल की जाएंगी जिनके साथ उसने ज्यादती की थी, मजलूमों को दी जाएंगी, और मजलूमों के जो गुनाह थे वो जालिम के सर मंडे जाएंगे, उसके खाते डाले जाएंगे। बताइए आप कितना बड़ा खसारा है। इसी तरह मिराश की जैसे बात हुई तो मिराश में लोग बहन बेटियों को अक्सर नहीं देते, भाई खा जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। और इसी तरह से बहुत से जो लोग होते हैं वो अपनी बीवियों को मेहर भी नहीं देते, 50-50 साल हो जाते हैं शादियां होते हुए और यहां तक के मौत वाकई हो जाती है लेकिन बीवियों को मेहर नहीं देते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाए कि जिसने अपनी बीवी को मेहर नहीं दिया, भाई ठीक है कोई शरई उजूर की बात नहीं कर रहा है वो अलग मामला है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है शरई उजूर की वजह से ना देना, अक्सर जो होता है वो वही बात जुल्म होता है, अनानियत होती है, अकड़ होती है, तकब्बुर होती है, या पता नहीं क्या मामला होते हैं, बारह तो मर जाते हैं लोग वो फिर नहीं देते। तो आप एक नाराजगी का इजहार करके ये खबर दे रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनी बीवियों को मेहर नहीं दिया कयामत वाले दिन उनको जिनाकार लोगों में उठाया जाएगा, सारी जिंदगी उन्होंने बीवियों से जिना किया ना उसबिल्ला भले उन्होंने निकाह किया हुआ था, तो इतनी बड़ी वजीदारी है। इसी तरह फसल में इरशाद फरमाया कि याद रखो जो हकदार वारिस को मांग से महरूम कर देगा अल्लाह उसे जन्नत से महरूम कर देगा, यानी हकदार, हम अपने बड़ों से एक मुहावरा सुनते थे बचपन में, हकदार तरसे अंगारे बरसे, हकदार तरसे अंगारे बरसे। लेकिन हम समझते थे ये मुहावरा तो हदीस शरीफ भी आ गई, तो हदीस शरीफ भी आ गई कि याद रखो जो हकदार को, हकदार बारिश को माल से महरूम करेगा, अल्लाह उसको जन्नत से महरूम कर देगा। बताइए, इसी तरह एक हदीस शरीफ में आप उसने इरशाद फरमाया, औरतों को औरतों के बारे में अल्लाह से खास तौर पर डरो, वो तुम्हारे हाथ में कैदी नहीं, गुलाम नहीं है तुम्हारी, तुमने उन्हें निकाह के जरिए हासिल किया है, तुमने उनकी शर्मगाहों को अल्लाह के नाम से हलाल किया है, लिहाजा नाम नुस्खा लिबास वगैरह में उन पर वसत करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में वसत करेगा। बीवियों की वजह से उन पर खर्चा करने से माल दे रहे हैं शौहर को, ये समझे हदीस शरीफ में, पैसा जो चाह रहा है ना भाई, माल आए मेरे पास, बीवियों पर खर्चा करे, बीवी बच्चों पर खर्चा करे, तुम्हारी उम्र तवील करेगा। बताइए आप, बीवी बच्चों पे खर्चा करने पर रिश्ते में इजाफा करना है? आप सभी भाई रसूल अल्लाह की बात नहीं, किसी मौलवी साहब की बातें नहीं है। तो क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारे रिश्ते में इजाफा करेगा और तुम्हारी उम्र तवील करेगा, जैसा तुम बीवियों के साथ करोगे वैसा अल्लाह तुम्हारे साथ करेगा। बताइए आप कितनी अजीब और गरीब और किस कदर शानदार हदीस है, जैसा तुम बीवियों के साथ सुलूक करोगे वैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे साथ ये सारे मामला करेगा। तो जुल्म का जो दायरा है वो बहुत वसी इस वक्त चल रहा है। तो कहां तक, ये तो थोड़ा सा एक इजमाली, थोड़ा सा एक गुफ्तगू हुई है। अब हर आदमी अपने तौर पे देखे, मैं अपने तौर पे देखूं, आप अपने तौर पे देखें, फिर कहां कहां किधर ज्यादतियां हो रही हैं, किस किस के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बाज लोगों को मैंने देखा बच्चा बाहर खेलने गया, मैंने बाज लोगों को देखा, अब छोटा बच्चा 10-12 साल का और पूरे 10 लोगों के सामने उसको इतनी जोर से चाटा मारा कि उसके नाक से खून जारी हो गया बच्चे की। बताइए बाप, ये बाप ऐसे भी जालिम होते हैं बाप, अरे भाई खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, समझाना है तो प्यार से समझाओ उसको, अभी तो ठीक है कमजोर है, रोध हो गए, चुप हो गया वो, लेकिन दिल में नफरत बैठ रही है उसके। एक वक्त आएगा ये जवान होगा, तुम बूढ़े होगे, फिर तुम इसके हाथों पिट रहोगे। मकाफाते अमल से भी डरना चाहिए, मुकाफाते अमल होता है ना, पलट के जो चीज हमने की होती फिर हमारे सामने आगे आती है। हमारे हजरत वाला आरिफुल्लाह हजरत अब्दुल हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि जब किसी की जालिम कोई इंसान होता है और वो बीवी पे जुल्म करता है, जब उसकी कभी कोई बेटी जवान होती है और जब कभी शादी होकर कहीं जाती है और उसको भी अपने जैसा कोई सर फेरा दामाद मिलता है, और फिर जब जुल्म करता है तो फिर वो अल्लाह वालों के पास ऐसे बूढ़े जालिम जाते हैं, माजी के जालिम, और कहते हैं अगर दुआ फरमा दे, बहुत जालिम दामाद मिला, बहुत जुल्म कर रहा है बेटी के साथ। और फिर बाप जब लोग आमिलों के पास जाते हैं कि आमिल साहब मैं आपको पैसे भी दूंगा सब कुछ, बेहतरीन को तावीज दे दो जिससे मेरा दामाद राम हो जाए और बेटी को प्यार से रखे। तो हजरत ने फरमाया क्यों, जिसकी बीवी तुम्हारी जो बीवी जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारी वो भी तो किसी की बेटी थी, या वो डायरेक्ट आसमान से आई थी, वो भी तो कोई किसी की, कोई उसकी माँ होगी, कोई उसका बाप होगा, वो भी तो किसी की चहेती लाडली थी ना, तो तुम भी तो कभी दामाद थे, तो तुमने क्या उसके साथ सुलूक किया। बस बाज दफा मुकाफाते अमल मिलता है, बाज दफा मुकाफाते अमल का सामना करना पड़ता है। ऐसे ऐसे वाकयात हैं, कहां तक मैं बताऊं कि बाज लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, ये सुनी सुनाई नहीं बता रहा इधर उधर की, कि जो जो जुल्म और सितम जो अल्फाज उन्होंने अपनी बीवियों के साथ किए थे, मामलात और अल्फाज जो हद तक अल्फाज तक बीवियों के साथ उन्होंने अदा किए थे, जब उनकी बेटियों की शादियां हुई तो उनके दामादों ने भी बिल्कुल वही रिएक्शन, वही अल्फाज, वही सारी चीजें उनकी बेटियों की भी साथ की, 19-20 का भी फर्क नहीं था। इससे बड़ी दलील क्या होगी, उससे बड़ी क्या दलील होगी कि मुकाफाते अमल का भी मामला होता है। तो डरना चाहिए, तो अभी हम लोगों की जिंदगी मौजूद है और लेन देन के मामला हों, पैसों के मामला हों, कर्ज के मामला हों, माँ बाप के साथ हमने उनकी नाफरमानी की हो, जो भी हमारे हमारे जहन में हो, तो उससे दुनिया में जीते जी उससे माफी मांगेंगे, क्योंकि ये जुल्म का जो मामला है ये खाली तौबा से माफ नहीं होता, मसला समझ लीजिए। अगर किसी को हमने दिल दुखाया है किसी का और उसका दिल फटा हुआ है हमारी तरफ से और हम अल्लाह से माफी मांगते रहते तो तौबा कबूल नहीं होगी, शरई मसला है। हजरत शेख फादी रहमतुल्लाह भी इसी चीज को इरशाद फरमाते हैं कि बाज लोग इतने जालिम होते हैं कि जुल्म तो उसकी मखलूक के साथ करते हैं और माफी अल्लाह से मांगते फिरते हैं। अरे भाई ये क्या जहालत है कि सर आपने फाड़ा किसी का, माफी आप अल्लाह से मांग रहे हो। भाई जिसका सर आपने फाड़ा है, मिसाल है देने को, उससे माफी मांगो ना, जिसको तकलीफ हुई है, तो अल्लाह भी माफ नहीं कर रहा। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन पहले उससे माफी मांग जिसके साथ तूने ज्यादती की है। तो ये तरीका होता है। तो कुछ गुना ऐसे होते हैं जो खाली तौबा से माफ नहीं होते, जिसमें एक गुना ये भी है कि अगर बंदों के हुकूक के मामले आते हैं, विरासत किसी की खाई गई, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, इंतकाल कर चुके हैं और हमसे ज्यादती हो गई है, वो बात आता है फिर अल्लाह से माफी मांगे और फिर रोजाना इसाले सवाब उनको करें, चाहे वो माँ बाप के साथ नाफरमानी की हो। बहुत से लोग बहुत रोते हैं बेचारे, पछताते हैं अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की और माँ बाप दुनिया में रहे नहीं, अब रोते हैं, उनको जमीर की आग में जलते रहते हैं। तो भाई इसका इलाज ये है कि इसाले सवाब करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह उनको माफ कर देगा, अजाब नहीं आएगा, पकड़ नहीं आएगी, और जब ये खुद मर के पहुंचेंगे तो माँ बाप इंशाल्लाह उससे राजी होंगे उस औलाद से, क्योंकि इतना जखीरा उसने हदियों का भेजा होगा कि उनके दर्जात में बहुत इजाफा हो चुका होगा, और जन्नत जन्नत में जो लोग होते हैं उनके दिलों में बोगर कीना नहीं होता, बोगर कीना नहीं होता जन्नतियों के उसमें। अल्लाह, जैसे हदीस शरीफ आपने इरशाद फरमाया कि जिसने माँ बाप के साथ जुल्म किया, नाफरमानी की, जुल्म ज्यादती की, मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी उसको उस वक्त तक जब तक दुनिया में कोई अजाब नहीं सहेगा। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं मौत भी नहीं आएगी उस वक्त तक, पहले अजाब उठा रहा होगा और फिर उसके बाद मौत आएगी। ये किस वजह से? जुल्म के ऊपर ही तो है, माँ बाप के साथ जुल्म ज्यादती के ऊपर। तो इस तरह गर्व तवज्जो देनी चाहिए कि हम लोग अपने आप को मोमिन मुत्तकी अल्लाह वाला परहेजगार ना समझे, सारा फसाद चल रही से होता है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह एक बार तशरीफ फरमाते उनकी मजलिस में, भरी हुई मजलिस की बयान फरमा रहे थे, उनके करीब एक साहब बैठे हुए थे, तो हजरत ने उनकी इसलाह फरमाई किस तरह के, भाई जो मेरे पास बैठे हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत मुत्तकी हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बस एक खराबी है, अच्छे तो बहुत हैं अपने आप को अच्छा समझते भी, यह खराबी है। नेक तो है, अपने आप को नेक समझते भी हैं, यह खराबी है। मुत्तकी तो है लेकिन अपने आप को मुत्तकी समझते भी हैं, यह खराबी है। अल्लाह वाले हैं लेकिन अपने आप को अल्लाह वाला समझते भी हैं, यह खराबी है। और फिर इरशाद फरमाए नेक बनना फर्ज, खुद को नेक समझना हराम, अल्लाह वाला बनना फर्ज, खुद को अल्लाह वाला या अल्लाह वाली समझना हराम। यहां से तकब्बुर पैदा होता है, तब हो जाता है इंसान। अल्लाह, बस इसी पे इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हर तरह के गुनाहों से बिलखुसूस जाने अनजाने, अपनी जबान से, अपने हाथ से, किसी भी अंदाज में किसी को भी नुकसान पहुंचाने से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, और लोगों के जज्बात की, उनकी दिल की कैफियत की चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। असल में अपने जो होते हैं, जो जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है, जो हमारे अपने जो प्यारे होते हैं, ये तो कल्बी एक ताल्लुक होता है, मोहब्बत का कल्बी रिश्ता जो होता है, ये रूह का रिश्ता कहलाता है। तो इसमें तो सवाल जवाब आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं होती, आंखें देख के इंसान पहचान जाता है कि मेरा महबूब मुझसे क्या चाहता है, इसकी क्या ख्वाहिश है, जबान पे तो लाता ही नहीं है वो, ये इसकी दलील होती है, ये दलील होती है। मुंह से बोल के महबूब ने अपने माशूक से वो काम करवाया तो क्या करवाया, सच्चा महबूब ही नहीं है वो, तो आशिक ही नहीं है। आशिक तो अपने महबूब का चेहरा देख के उसको पता चल जाता है कि मेरा महबूब इस वक्त क्या चाहता है, ये कहलाती है मोहब्बत की दलील। यहां तो लोग मुंह से बोल बोल के मर जाते हैं तो भी कोई नहीं सुनता, तो कैसे भाई मसाइल होंगे। बहरहाल हजरत वाले अंदर शाद फरमाते थे हर बयान के बाद ये पांच माल जरूर चाहे मुख्तसर से सही बताया करो, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है फराइज और वाजिबात से। ये पांच माल वलीउल्लाह बनाने वाले पांच अमाल, जो भी इंशाल्लाह ये पांच अमाल कर लेगा मरेगा नहीं उस वक्त तक जब अल्लाह पाक उसको अपनी बड़ी विलायत उज़्मा उसको नसीब फरमाएंगे, खास ताल्लुक नसीब फरमाएंगे। और 2 अरब के करीब तकरीबन दुनिया में मुसलमान है, लेकिन बहुत कम लोग ये पांच अमाल करते हैं। तो पहला जो मरे कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने का एहतमाम करें, बगैर तजवीद के पढ़ना गुनाह है, सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दें अगर तजवीद सही नहीं है, तो मतलब फिक्र की तरफ मुतवज्जा करना है कि फिक्र करें, किसी कारी साहब से कुरान कायदा पढ़ना शुरू कर दें, 1.5-2 महीने में इंशाल्लाह हमारी तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा अमल एक मुठ्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना मर्दों के लिए वाजिब है, वाजिब है फर्ज के दर्जे में, चारों इमामों का जमा, किसी का अख्तलाफ नहीं। और बड़ी मुझ को देख के और दाढ़ी जो मुड़े हुए लोग कुछ लोग आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नफरत नागवारी से मुंह फेर लिए थे और बद्दुआ फरमाई थी हलाक और बर्बाद हुई क्या तुम शक्लें बनाते हो, कि बड़ी बड़ी मूछे रखते हो और दाढ़ियों को मुड़ाते हो, नाराजगी का इजहार फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और तीसरा अमल जो टखनों सुबर पाइचे रखे तमाम मर्द हजरात मा असल मिनल काबैन मिनल जारे फिन्नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिस पर टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। कौन फरमा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मर्दों के लिए 2 सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब हम खड़े हो चल रहे हो, खड़े हो चल रहे हो, टखने खुले हुए नजर आना जरूरी है, और बैठे लेटे तो भले छुप जाएं। अब खवातीन तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़े, वो तो मर्द औरत दोनों के लिए, इसी तरह दाढ़ी और टखनों से और पैचों के मामले में जो है خواتین ان کی جگہ دو عمل یہ کرنا ہے، ایک تو شوہر کی اطاعت گزاری فرمان برداری اختیار کریں اور دوسرا شرعی پردے کا اہتمام کریں، اور چوتھا عمل یہ مرد اور خواتین جو ہے وہ دونوں کی نہیں یکساں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باب نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نظر کی حفاظت کے ساتھ اللہ رب العالمین شرم گاہ کی حفاظت کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے نظر بازی، بد نظری کرنا، تو اس لیے وہ شاخ ہی کاٹ دو جس پہ الو بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین بڑے گناہ سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنی نظروں کو نیچی کر دو، اور آگے خواتین کو الگ حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریفوں میں فرماتے ہیں منقول ہے لعن ناظرہ منظورہ رہی، اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بدنظری کرے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گھور گھور کے دیکھے، اور اللہ ان پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کریں۔ یہ وہ بیچاری ہماری بعض خواتین آتی ہیں جو جتنے بھی نامحرم رشتے ہوتے ہیں، یہ ماموں کا خالہ کا چچا کا چچا کا، یہ نندوئی یا بہنوئی یا خالو یا جو بھی پھوپا، اس طرح کے جو نامحرم رشتے ہوتے ہیں، اور نفس اور شیطان کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو اپنے اپنے وہ باہر والے سے، ارے بھائی اپنے نہیں ہیں، اپنا باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اور بھتیجا بھانجا شوہر یہ کہلاتے ہیں محرم، باقی ان سے شرعی پردہ کرنا عورتوں کے لیے واجب ہے، نہیں تو لعنت کی بدعا آ رہی ہے ان خواتین کے لیے، رسول اللہ کی باتیں بھائی۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے بود علی رحمہ، اللہ پاک بندے یا بندی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ رحمت سے جب بندہ دور ہو گیا پھر اڑتے تھی راکے لگتی ہیں، بلائیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہیں۔ تو انسان ہے کبھی خطا ہو جائے، تو کبھی ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی توبہ کر لے، تو پھر رحمت کا سائے سے اس کا اخراج نہیں ہوگا، خروج نہیں ہوگا، وہ قائم رہے گا انشاءاللہ، فوراً نہیں ہٹتا رحمت کا سایہ، فوراً لعنت کی بدعا میں نہیں آتا آپ وسلم کی۔ تو خاص طور پہ موبائل سے بچیں، اس نے تو کسی کو چھوڑا ہی نیک اور بد سب لگے ہوئے ہیں بھائی آج کل اس میں، تو نظروں کی حفاظت کریں۔ اور پانچ عمل ہے دل کو پاک صاف رکھیں، یا علم و خائنت العیون وما تخفی الصدور، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ آنکھوں کی خیانت کو خوب دیکھ رہے ہیں کہ مس یوز کرتے ہو آنکھوں کا، جہاں نگر ڈالنے کو کہتا ہوں وہاں ڈالو، جہاں منع کیا وہاں کیوں ڈالتے ہو، کیوں کرتے ہو بدنگی؟ یا علم و خائنت العیون، آنکھوں کی خیانت کو اللہ خوب دیکھ رہے ہیں، امانت دی، کتنے ایسے میں نے پیدا کیے جو اندھے مادر بات اندھے، ان کو میں نے آنکھیں نہیں دی، ذرا دیکھو امانت دے رہا ہوں آنکھیں، تمہاری چیز نہیں ہے میں دے رہا ہوں، واپس بھی لے سکتا ہوں۔ اس میں یہ بڑی خطرناک تشریحات ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں۔ وما تخفی الصدور، ایک تو آنکھوں میں آنکھوں کی چوریاں کرتے ہو، مس یوز کرتے ہو آنکھوں کا، اس کے بعد دل میں گندے خیرات پکاتے ہو، وما تخفی الصدور، میں تمہارے سینوں کی خیرات سے بھی واقف ہوں۔ ایک تو پہلے نظر گندی کرتے ہو، پھر دل گندا کرتے ہو، بیٹھ کے گندے خیالات پکاتے ہو، دل کو یعنی پاک صاف رکھنا ہے۔ پانچ عمل ہے کہ دل کو پاک صاف رکھیں، کیونکہ یہ قلب ہمارا بیت اللہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، تجلیات جذب، تعلق مالا، انورات، آپ وسلم کی محبت، جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے بندے کو، سب سے پہلے وہ قلب کے اندر وہ چیز آتی ہے، اور جو دل ہوتا ہے، قلب ہمارا یہ ہیڈ آفس ہے، ہمارے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، سردار ہے، تو پھر اس کے دل کے ذریعے، بلڈ کے ذریعے پمپنگ ہوگی تو سارے اعضاء میں وہ نور پھیلے گا۔ تو دل کو پاک صاف رکھنا ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ ہے۔ دلیل بھی سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے بات ہمیں کہلوائی ہو، کہلوائی ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا، زمین و آسمان میرے لیے چھوٹے، میری اتنی بڑی بات ہے، لیکن اگر تلاش کرنا ہو میں تمہیں کہاں ملوں گا، تو کسی بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب دیکھنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ بندہ مومن کا ٹوٹا ہوا دل، کون سا ٹوٹا ہوا دل؟ گناہوں سے جب انسان بچتا ہے دل کے پرت سے اڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکتے ہیں باغ دروں، جب کسی گناہ کی لذت سے بچتا ہے آدمی، اور اختیار میں ہوتی ہے اس کی لذت، جب بچتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اس کا، لیکن بس اسی تکلیف پہ اللہ اس دل کو اپنے پیار کے قابل بناتے ہیں، پھر ایسے ہی لوگ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، پھر ایسے ہی لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، پھر ایسے ہی لوگوں کو مستجاب و دعوات بنایا جاتا ہے۔ اور ان پانچوں اعمال کی توفیق، کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں، تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ایک ایک کر کے پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم، یا رحمن رحیم، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی رہ نہیں، تو شان رحمت سے بخش دے، معاف فرما دے، یا اللہ سب سے پہلے بولنے والے کو اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرما دے، بولا گیا سننے والا، بولنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے، اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ، اس بیان کو اپنی رضا کاملہ کا، ہماری بخشش کا، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو भी जाए साजात है, अल्लाह तू जानने वाला है, अल्लाह किसी को भी महरूम ना फरमा। या अल्लाह जिसके दिल में जो भी अल्लाह हाजत है अल्लाह उसको शान रहमत से पूरी फरमा दे। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफा कुली नसीब फरमा, जितने भी मुसीबत भरे हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे अंदर जुर्म का जो मादा अगर कहीं जिसमें किसी में हो अल्लाह उसको जुर्म और सितम से निजात दिला दे, उसको सुखराज रजीला से निजात दे दे। अल्लाह उसको हरीम उत्तबा बना दे, अल्लाह उसको बुरदबार बना दे। अल्लाह रसूल अल्लाह वसल्लम के करीमाना अखलाक हम सबको अल्लाह पाक अता फरमा दे। या रब करीम हमें तकब्बुर से अपनी बड़ाई से मैं अकड़ से लोगों को हकीर जलील समझने से और जितने जाही और बाही अल्लाह हमारे अंदर अमराज रजील हैं अल्लाह उन सब से हमको पाक साफ कर दे। या रब रहीम बिलखसूस फलस्तीन के मुसलमानों की जान और माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन यहूदियों को और जो उनके मददगार हैं और जो ट्रंप मलूम को, या अल्लाह इन सबको जल्द अज जल्द तबाह बर्बाद कर दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे, इबरत का निशान बना दे। और अल्लाह इंडियन मुसलमानों पर जुल्म और सितम शुरू हो रहा है और उन्होंने कत्ल गारत गरी का कहा है रमजान में, अल्लाह उन खबीस मोदी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे। जो मस्जिदें गिरा रहे हैं मुसलमानों को मार रहे हैं अल्लाह अल्लाह या अल्लाह उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दे, पर दुनिया और आखरत में दोनों जहाँ में अजाब नाजिल फरमा। या अल्लाह हमें यहूदियों की चीज़ों का 100% बायकाट करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमको शर्म अता फरमा, इस्लामी गैरत अता फरमा, बेगैरती से हमारी हिफाजत फरमा। या रब करीम या परवरदिगार, या अल्लाह मेरे वालिद साहब की और मेरे मुर्शिदीन की और हमारे जुमला मरहूमीन की, कुल मोमिन मोमिनात की, कुल जिन्नात की, सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा। सबको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा। सबकी कब्रों को नूर से भर दे। कुछ खवातीन की रसौलियाँ दुआ करें, उनकी रसौलियों को बगैर ऑपरेशन के ख़त्म फरमा दें। मोहसिन साहब की अहलिया के गुर्दों की मामला बहुत ख़राब हैं, बहुत बड़ी पथरी है, तकलीफ है, डायलिसिस की तरफ उनके मामला करें, दुआ करें अल्लाह पाक बगैर ऑपरेशन के उनकी पथरी को ख़त्म फरमा दें। कमर शिफा कुली नसीब फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم